पंचम उल्लास गुणीभूत व्यंग्य के भेद मध्यम काव्य ध्वनि काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य काव्यों का भेद सहृदयों के अनुभव के आधार पर किया जाता है। सहृदय मात्र संवेद्य व्यंग्य होने पर भी ध्वनि काव्य कहलाता है। सहृदय से भिन्न सामान्य व्यक्ति भी जिस व्यंग्य को अनायास ग्रहण कर ले वह अत्यंत स्पष्ट होने के कारण वाच्यार्थ के समान ही हो जाता है। कहीं कहीं व्यंग्य का चमत्कार वाच्य की अपेक्षा मंद पड़ जाता है। ऐसी दशा में जहाँ व्यंग्य अगूढ़ स्पष्ट वाच्यवत रहे या वाच्य से न्यून रहे अथवा व्यंग्य की प्रतीति सहृदयों को सरलता से न हो सके, इन सभी दशाओं में गुणीभूत व्यंग्य मध्यम काव्य ही होता है। इस प्रकार गुणीभूत व्यंग्य काव्य 8 प्रकार का होता है। अगूढ़ परस्यांगम वाच्य सिद्ध्यंग मत्स्फुटम संदिग्ध तुल्य प्रधान्य काक्वा क्षिप्तम सुंदरम व्यंग्यमेव गुणीभूत व्यंग्य त्याष्टौ विदाह स्मृताः। 1 अगूढ़ व्यंगम, 2 अपरस्य दूसरे का अंग व्यंग, 3 वाच्य सिद्धि का अंगभूत व्यंग, 4 अस्फुट व्यंग, 5 संदिग्ध प्रधान्य व्यंग, 6 तुल्य प्रधान्य व्यंग, 7 काकु से आक्षिप्त व्यंग, 8 असुंदर व्यंग। 1 अगूढ़ व्यंग्यम असहृदयरपि भटीति संवेद्य झटीति संवेद्यम, अत्यंत स्पष्ट होने से असहृदय को भी वाच्यवत प्रतीत हो। 2 अपरांग व्यंग्यम अपरस्य रसादेर वाच्यस्य वा अंगम, ऐसा व्यंग्य जो रस भाव रसाभास भावाभास आदि का या वाच्य का भी अंग साधक उपकारक हो। 3 वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्यम वाच्य सिद्धेरंगम निदानम वाच्यस्य सिद्धिरेव यदधीना तदीति यावत, अर्थात ऐसा व्यंग्य जिसके अधीन वाच्यार्थ की सिद्धि हो, जिसकी सहायता के बिना वाच्यार्थ ही संपन्न न हो, व्यंग्यार्थ सापेक्ष वाच्यार्थ। 4 अस्फुट व्यंग्यम सहृदयानामपि सुख संवेद्यम, जिसका समझना सहृदयों के लिए भी कठिन है, ऐसा व्यंग्य। 5 संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्यम संदिग्धम चमत्कार जनने वाच्य व्यंग्ययोः संदेह विषय भूतम प्राधान्य यत्र तत्। वाच्य और व्यंग्य के चमत्कार की प्रधानता में जहाँ संदेह हो। 6 तुल्य प्राधान्य व्यंग्यम तुल्यम अर्थात वाचेन तुल्यम प्राधान्यम यत्र तत्, जहाँ वाच्य का व्यंग्य का चमत्कार बराबर रहे। 7 काक्वाक्षिप्तम व्यंग्यम काकुर्ध्वनिर्विकारः तया आक्षिप्तम झटिति प्रकाशितम यया काक्वा विना वाच्यार्थ एव नात्मान लभते तया प्रकाश्यमिति, जिस काकु के बिना वाच्यार्थ ही संगत न हो। 8 असुंदरम व्यंग्यम स्वभावादेव वाच्यापेक्षया चारु, वाच्य की अपेक्षा जिस व्यंग्य का चमत्कार सुंदर न हो। गुणीभूत व्यंग्य काव्य के मुख्य भेद ये ही है। ध्वनि के भेदों की तरह इसी गुणभूत व्यंग्य काव्य की भी संकर व संसृष्टि के द्वारा गणना करने से भेद संख्या बहुत अधिक हो सकती है। प्रकृति में उसका कोई अधिक उपयोग नहीं है, अतः निरर्थक गणना का परिश्रम नहीं करना है। यदि कहीं वस्तु से अलंकार की अभिव्यंजना हो तो ऐसा काव्य भेद गुणभूत व्यंग्य का न होकर ध्वनि का होगा, यह आनंद वर्धनाचार्य का मत है। व्यंजनते वस्तु मात्रेण यदा अलंकृतय सदा ध्रुवम ध्वन्यंगताम तासाम काव्य वृत्ते सदाश्रयात्। संक्षेप में व्यंग्य 3 प्रकार का होता है, रस ध्वनि वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। इसमें रसादि रूप व्यंग्य वाच्यता को सहन नहीं करता, अन्य वस्तु रूप और अलंकार रूप व्यंग्य कभी कभी अन्य दशा में वाच्य भी हो सकता है। ध्वनि वाच्यता सह में अविचित्र वस्तु विचित्र अलंकार, वाच्यता सह रस भाव रसा भास भावा भासादि। व्यंजना की स्थापना अविधा व लक्षणा की चर्चा तो अन्य शास्त्रों में भी यत्र तत्र होती ही रहती है। प्रायः शास्त्रीय चर्चा में सर्वत्र अपने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए अविधा वृत्ति का आश्रय लिया जाता है। कहीं कहीं अत्यावश्यक प्रमेय के प्रतिपादन के लिए यदि अविधा वृत्ति विवक्षित तात्पर्य को समझाने के लिए समर्थ न हो तो वहाँ लक्षणा वृत्ति का भी आश्रय लिया जाता है। इन्हीं प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध वृत्तियों की परिधि में शास्त्र चर्चा चलती है, परंतु साहित्य शास्त्र में केवल अविधा या लक्षणावृत्ति से ही काम नहीं चलता है। साहित्य गोष्ठी या कवि गोष्ठी में तो इन वृत्तियों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता है जितना कि व्यंजनावृत्ति का सम्मान है, जहाँ न गतासि का अर्थ अवश्यमेव गतासि हो जाता है, भ्रम का अर्थ मा भ्रम हो जाता है, अर्थात विधि का निषेध में पर्यवसान और निषेध का विधि में पर्यवसान हो जाता है। ऐसे स्थलों में विचार इस प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध वृत्तियों की पहुँच ही कहाँ, जहाँ व्यंग्य वस्तु के ही विषय में कोष्ठक जो कि ध्वनि का स्थूल भेद है, साथ ही साथ दशा विशेष में वाच्यता सह भी है, कोष्ठक बंद ही यह बात है, वहाँ वाच्य वृत्ति से जो अत्यंत दूर रस भाव आदि ध्वनि है उसके विषय में तो कहना ही क्या, रसादि ध्वनि तो स्वप्न में भी वाच्य नहीं है। फिर उस रसादि लक्षण अर्थ का बोधन कराने में अविधादि वृत्तियाँ कहाँ तक समर्थ हो सकती हैं? अतः रसादि अर्थ के बोध के लिए अविधा लक्षण से अतिरिक्त व्यंजना को अवश्य मानना चाहिए, जैसा कि विश्वनाथ कविराज का कहना है, वृत्ति नाम विश्रांतेर विधा तात्पर्य लक्षणाख्यानाम अंगीकार तुर्या वृत्तिर्बोधे रसादिनाम। शब्द शक्ति मूलक ध्वनि अविधा से गतार्थ नहीं है, अविधा मूलक व्यंजना के जो दो भेद हैं असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य, ये दोनों भेद अविधा वृत्ति के विषय नहीं है, क्योंकि असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि तो स्वप्न में भी वाच्यता को सहन नहीं करता, और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के जो तीन भेद हैं शब्द शक्त्युत्थ अर्थ शक्त्युत्थ और उभय शक्त्युत्थ, इसमें शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि जहाँ अनेकार्थ शब्द का प्रकरण आदि वशात एक अर्थ में नियंत्रण हो जाने पर भी अन्य अर्थ की जो प्रतीति होती है उसके लिए व्यंजना व्यापार मानना ही पड़ेगा। अर्थ शक्ति मूलक ध्वनि में भी व्यंजना अनिवार्य, यह ध्वनि अभिहितान्वयवादियों की तात्पर्यावृत्ति से गतार्थ नहीं हो सकती है। अभिहितान्वयवादियों के मत में अविधा शक्ति केवल पदार्थों की उपस्थिति कराती है, पदार्थों के परस्पर संसर्ग रूप वाक्यार्थ की प्रतीति के लिए एक तात्पर्य नाम की वृत्ति माननी पड़ती है। जब वाक्यार्थ ज्ञान के लिए ही अलग से तात्पर्य नाम की वृत्ति माननी पड़ती है तो वाक्यार्थ के बाद में प्रतीत होने वाले व्यंग्यार्थ के लिए तो अवश्य ही व्यंजना वृत्ति माननी पड़ेगी, अर्थात जाति में संकेत ग्रह होने से सामान्य रूप पदार्थों का परस्पर संसर्ग रूप विशेष जहाँ पदों से उपस्थित न होकर आकांक्षा योग्यता सन्निधि रूप तात्पर्य वृत्ति से उपस्थित होता है, वहाँ वाक्यार्थ बोध के बाद में उपस्थित होने वाले व्यंग्यार्थ की तो बात ही क्या। अन्विता विधानवाद में भी व्यंजना आवश्यक, अन्विता विधानवादी प्रभाकर आदि जो संकेत ग्रह का प्रधान साधन व्यवहार को मानते हैं, क्योंकि उत्तम मध्यमादि वृद्धों के गामाने इत्यादि वाक्यों के व्यवहार से ही सर्वप्रथम बालक को संकेतिक ज्ञान होता है, इनके मत में गाम अश्व ये पद विशेष होते हुए भी दोनों में रहने वाले सामान्य कर्मत्व रूप से ही आने के साथ अन्वित होते हैं, यह उनका सामान्य विशेष हुआ, पर गोत्व और अश्वत्व या गौ और अश्व आदि अति विशेष हैं, यह अति विशेष रूप अर्थ भी वाच्यार्थ में प्रतीत होता है पर इसमें संकेत ग्रह नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति में संकेत ग्रह करने से आनंद और व्यभिचार दोष आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके मत में यहाँ तीन चीजें हैं, एक सामान्य गाम अश्वम आदि सामान्य रूप से अन्वितत्व मात्र, दो सामान्य विशेष का अर्थ है कर्मत्वादि रूप से अन्वितत्व गामने इत्यादि, तीन अति विशेष का अर्थ है गो अश्वादि व्यक्ति विशेष के साथ अन्वितत्व। अन्विता विधानवादी के मत में अन्वित में शक्ति मानने से अन्वित वाक्यार्थ के भाषित होने पर भी अति विशेष अर्थ असंकेतित होने के कारण वाच्यार्थ नहीं हो सकता, उसके लिए अतिरिक्त शक्ति मानने की जरूरत है। जब वाक्यार्थ के बोध के लिए अविधा से भिन्न शक्ति की आवश्यकता होती है तो वाक्यार्थ के बोध के बाद उपस्थित होने वाले व्यंग्यार्थ का बोध अविधा से हो सकेगा, ऐसा कहना तो सर्वथा असंगत है। मीमांसक एक देशीय का मत किसी मीमांसक का कहना है नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते, नैमित्तिक के अनुसार निमित्त की कल्पना की जाती है, अतः व्यंग्यार्थ जो नैमित्तिक है वह किसी न किसी शब्द से ही प्रतीत होता है, अतः शब्द को ही उस प्रतीति में निमित्त मानना पड़ेगा। और निमित्त दो ही प्रकार का होता है, कारक और ज्ञापक। व्यंग्यार्थ के प्रति शब्द का निमित्तत्व कारकत्व रूप नहीं हो सकता है, अपितु ज्ञापकत्व या बोधकत्व रूप ही होगा। व्यंग्यार्थ के साथ इसका बोध्य बोधक भाव संबंध या निमित्तिक संबंध रहेगा। यह बोध्य बोधक संबंध अविधा शक्ति ही है, क्योंकि शब्द से अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अविधा ही है। जब अविधा व्यापार से व्यंग्यार्थ का बोध हो जाता है तो फिर अतिरिक्त व्यंजना वृत्ति को मानने की क्या आवश्यकता है। व्यंजनावादी की तरफ से उत्तर। आपके मतानुसार शब्द से जो व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, इसमें शब्द केवल ज्ञापकत्व निमित्तत्व है, परंतु यह ज्ञापकत्व रूप निमित्त शब्द तब बन सकता है जब उस अर्थ में उस शब्द का संकेत ग्रह हो। आपके सिद्धांत अनुसार संकेत केवल सामान्य रूप से अन्वित मात्र में ही गृहित होता है, विशेष में संकेत ग्रह नहीं होता। इसलिए निमित्त रूप शब्द का जब तक व्यंग्य रूप विशेष अर्थ के साथ निश्चित रूप से संबंध या संकेत ग्रह न हो, तब तक अविधा से व्यंग्यार्थ की प्रतीति ही कैसे हो सकती है, क्योंकि कहीं भी व्यंग्यार्थ में संकेत ग्रहण नहीं है। इसलिए निश्चित संकेत ग्रह के अभाव में नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते, यह कथन भी अविवेकपूर्ण है। भट्ट लोल्लट का पूर्व पक्ष। भट्ट लोल्लट भी मीमांसा अनुयायी है, वे भी व्यंजना वृत्ति को नहीं मानते। उनके मत में व्यंग्यार्थ की प्रतीति अविधा व्यापार से ही हो जाती है। इस पर उन्होंने एक बाण का दृष्टांत दिया है। सो अयमिशोरिव दीर्घ दीर्घ तरो विधा व्यापार। यह अविधा व्यापार भी बाण की तरह दीर्घ दीर्घतर होता जाता है, जैसे किसी बलवान के द्वारा प्रयुक्त एक ही बाण शत्रु का वर्म भेदन, चर्म भेदन तथा मर्म भेदन कर देता है। अभिप्सित कार्य करने तक बीच में विश्राम नहीं करता है। इसी प्रकार एक ही अविधा व्यापार पदार्थोपस्थिति पदार्थोपस्थिति अन्वय बोध व व्यंग्यार्थ की प्रतीति भी करा सकता है। जहाँ तक वक्ता का तात्पर्य, वह सब अविधा वृत्ति द्वारा ही बोधित हो जाता है, और यह तात्पर्य अभिधेय तक ही सीमित रहे यह बात भी नहीं। आचार्य धनिक की भी यही सम्मति है कि तात्पर्य कोई तराजू से तोली हुई चीज नहीं है, अपितु जहाँ वक्ता को अर्थ की जरूरत रहती है वहाँ तक उन शब्दों का तात्पर्य समझा जाए। तात्पर्य व्यतिरेकाच्य व्यंजकत्वस्य न ध्वनिः यावत् कार्य प्रसारित्वात् तात्पर्यम् न तुला घृतम् इति। क्योंकि जिस अर्थ में जिस शब्द का तात्पर्य रहता है वही उस शब्द का अर्थ है। कहा भी है यत् परः शब्दः सः शब्दार्थः इति, अतः निःशेषच्युत चन्दनमिति इत्यादि शब्दों का नायकांतिक गमन रूप जो विधि है वह तात्पर्य विषय होने के कारण वाच्य ही है, न कि व्यंग्य। व्यंजनावादी का समाधान। पूर्व पक्षी ने यत्परह शब्द स शब्दार्थः, इस वैदिक वाक्य का तात्पर्य जो यह निकाला है कि लक्ष्य व्यंग्य आदि सभी अर्थों को वाच्यार्थ ही मान लेना चाहिए। वस्तुतः मीमांसा शास्त्र के नियमों के अनुसार उक्त वाक्य के तात्पर्य का अनभिज्ञ ही है, क्योंकि उक्त वाक्य यत्परः शब्दः स शब्दार्थः। इस न्याय का अर्थ मीमांसकों ने इस प्रकार किया है, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः इत्यादि वैदिक वाक्यों में कहीं केवल होम क्रिया का विधान होता है, कहीं दधना जुहोति जैसे वाक्यों में होम के पूर्व वाक्य से प्राप्त होने के कारण केवल दधि रूप साधन द्रव्य का विधान अभिप्रेत होता है, कहीं सोमेन यजेत जैसे वाक्यों में सोम और याग दोनों के अप्राप्त होने से दोनों का विधान अभिप्रेत होता है। इस प्रकार वैदिक विधि वाक्यों में जहाँ जितना अंश प्रमाणांतर से प्राप्त होता है उतने अंश का विधान अभिप्रेत होता है, जैसे अग्नि अदग्ध का ही दहन करता है, उसी प्रकार वैदिक वाक्य या विधि वाक्य भी अप्राप्त का ही विधान करते हैं। ऐसी स्थिति में जिस अप्राप्त अंश के बोधन में विधि वाक्य का तात्पर्य होता है वही उस विधि वाक्य का विधेय या तात्पर्य अथवा प्रतिपाद्य होता है। यही यत्परः शब्दः स शब्दार्थः का अर्थ है। लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ सब शब्द का वाच्यार्थ ही होता है। यह अर्थ यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इस वाक्य का कदापि नहीं है। यदि यही अर्थ इस वाक्य का होता तो कुमारिल भट्ट आदि मीमांसक भी लक्षणावृत्ति को क्यों मानते। अतः भट्ट लोलट आदि जो मीमांसक इस तात्पर्य वाच्य युक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ को वाच्यार्थ ही सिद्ध करना चाहते हैं, वे उस वाक्य का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझते। स्वयं अपने शास्त्र के अर्थ को न समझने के कारण मम्मट ने इनको देवानाम प्रिय कहा अर्थात मूर्ख। उक्त यत्पर शब्द सशब्दार्थ इस वाक्य का अभिप्राय ग्रंथकार इस प्रकार समझाते हैं। भूतम भव्याय उपदिश्यते, भूत का अर्थ है सिद्ध कारक आदि पदार्थ, भव्य का अर्थ है साध्य क्रियारूप। इन दोनों का जहाँ सहोच्चारण हो वहाँ भूत सिद्ध का भव्य साध्य के लिए उपदेश होता है, अर्थात सिद्ध भूत भव्य साध्य के अंग रूप में उपदिष्ट होता है, क्योंकि आम नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्य मतदर्थानाम इस नियम के अनुसार वेद के क्रियापरक विधि निषेध परक होने से अक्रिया स्वरूप जो सिद्ध भाग है वह क्रियारूप साध्य का अंश बन जाता है, अतः क्रियारूप विधि अंश की ही प्रधानता रहती है। यही भूत भव्याय उपदिश्यते इस वाक्य का अर्थ है, जैसे लोहितो श्लीषा ऋत्विज प्रचरन्ति। यह वाक्य शेन याग के प्रकरण में आया है। शेन याग एक विकृत याग माना जाता है और ज्योतिषोम याग इसका प्रकृति याग है। यत्र समग्रांगोपदेश सा प्रकृति, इसी को प्रधान याग कहते हैं। प्रकृति याग के साथ अनेक विकृति याग भी वर्णित होते हैं। इन विकृति यागों में विशेष नवीन अंगों का ही वर्णन होता है। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस नियम के अनुसार शेष सारी विधियां प्रकृति की तरह की जाती हैं। ज्योतिष टोम रूप प्रकृति याग में सोश्रीषा विनीत वसना ऋत्विज प्रचरन्ति इस वाक्य के द्वारा ऋत्विक प्रचरण का विधान किया हुआ है। शेन याग में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस नियम के अनुसार यहाँ ऋत्विक प्रचरण स्वयं प्राप्त है, न तो यहाँ उष्णीष का विधान है और न ही प्रचरण का विधान है। ये तो सब ज्योतिषोम वाले वाक्य से प्राप्त ही है, केवल यहाँ उष्णीष के लौहित्य का विधान अभिप्रेत है, इतना ही इस वाक्य का अर्थ है। अतः यत्पर शब्द स शब्दार्थ यह वाक्य इसी अर्थ को सूचित करता है। इसी प्रकार दधना जुहोति इत्यादि वाक्य में भी दधि द्रव्य है, द्रव्य सिद्ध होता है साध्य नहीं, पर कभी कभी यह भी साध्य की तरह प्रतीत होता है। अंग रूप से विधान किए गए सिद्ध पदार्थ का भी प्रधान क्रिया से संबंध होने से साध्य की तरह प्रतीति होती है। प्रकृति में हवन का अन्य प्रभाव से विधान हो जाने से केवल दधि का करणत्व मात्र से विधान किया गया है। इसी प्रकार कहीं दो या तीन पदार्थों का भी विधान होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिसका विधान किया जाता है उसी में शब्द का तात्पर्य रहता है, और जो शब्द वाक्य में आए हैं उन्हीं उपात्त शब्दों में ही किसी के अर्थ में वाक्य का तात्पर्य रहता है। मीमांसक की ओर से पुनः शंका, मीमांसक पुनः आशंका करता है कि यदि वाक्यांतर्गत उपात्त शब्दों के अर्थ में ही यदि वाक्य का तात्पर्य है तो फिर विषम भक्षयमाचास्य गृहे भुंक्याह भुंक्थाह विष खा ले, पर इसके घर भोजन मत कर, अर्थात इसके घर का भोजन विष से भी भयंकर है, अतः नहीं खाना चाहिए। यह तात्पर्य उपात्त शब्दों में नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि वाक्य में उपात्त शब्दों में ही तात्पर्य रहता है। व्यंजनावादी का समाधान, यहाँ विषम भक्षय इत्यादि वाक्य को यदि अलग अलग वाक्य माना जाए तो इस वाक्य का अर्थ असंगत हो जाएगा, क्योंकि यह किसी मित्र का वाक्य है। कोई मित्र अपने मित्र को विष खाने की सलाह नहीं देगा, इसलिए विष भक्षण का आदेश देने वाला यह वाक्य स्वयं में अपूर्ण है। इसलिए माचास्य गृहे भुंक्त्या इस दूसरे वाक्य के साथ संबंध मानना आवश्यक है। अतः विष भक्षण वाक्य स्वयं अनुपपन्न होने के कारण दूसरे वाक्य का अंग बन जाता है। अंगांगी भाव संबंध होने से दोनों की एक वाक्यता हो जाती है। एक वाक्यता हो जाने पर उपात्त शब्द में ही तात्पर्य आ जाता है। अतः उपात्तस्यैव शब्दस्यार्थे तात्पर्यम् इस नियम की संगति हो जाती है। यदि यह कहा जाए कि शब्द श्रवण के बाद जितने भी अर्थ की प्रतीति होती है वह सब अविधा व्यापार का ही विषय है, तो किन्हीं वाक्यों के श्रवणांतर मुखादि का विकास व संकोच होता है वह भी अविद्या व्यापार का ही विषय क्यों नहीं माना जाता है, क्यों वह अनुमान का विषय माना जाता है। फिर दीर्घ दीर्घतर अभिधा व्यापार से ही सारे अर्थों की सिद्धि हो जाने पर लक्षणा व्यापार की भी क्या आवश्यकता है, जिसको आपने भी स्वीकार किया है और आपके मीमांसा दर्शन में माने हुए श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान सामाख्या इन छह प्रमाणों की पूर्व पूर्व की बलवत्ता क्यों मानी जाती है। अर्थात यदि शब्द श्रवण के बाद प्रतीत होने वाले सभी अर्थों की प्रतीति अविधा से ही हो जाती है तो न लक्षणा की आवश्यकता है और न श्रुति आदि प्रमाणों की प्रबलता दुर्बलता का निश्चय ही हो सकता है। इसलिए अन्विता विधानवाद में भी निषेध च्युत चंदनम इत्यादि स्थलों में निषेध रूप वाचार्थ से प्रतीति होने वाले विधि की व्यंग्यता सिद्ध होती है। नित्यानित्य दोष की व्यवस्था के लिए भी व्यंजनावृत्ति आवश्यक है। वाच्य वाचक भाव से भिन्न व्यंग्य व्यंजक भाव यदि नहीं माना जाए तो असाधु पदत्व आदि नित्य दोषों का और कष्टत्व आदि अनित्य दोषों का विभाग भी नहीं बन सकता है। वाच्य वाचक भाव से पृथक व्यंग्य व्यंजक भाव को स्वीकार करने पर तो व्यंग्य के अनेक प्रकार होने से कहीं किसी के औचित्य के कारण कोष्ठक अर्थात श्रुति कटत्वादि की क्वचित श्रृंगार आदि रसों में ही वर्जनीयता रहेगी, अन्यत्र तो उनकी उपादेयता होगी। कोष्ठक बंद विभाग व्यवस्था बन ही जाती है, इसलिए व्यंग्य व्यंजक भाव को मानना ही चाहिए। गुणों की व्यवस्था के लिए व्यंजना जरूरी। यदि व्यंग्य व्यंजक भाव न माना जाए तो कुमार संभव में आए हुए समागम प्रार्थनाया कपालिनः इस पद में शिव के वाचक पिनाकिन आदि पदों की अपेक्षा कपाली आदि पदों का काव्यानुगुणत्व तथा अभिमत रसाभिव्यंजकत्व कैसे माना जा सकता है। महाकवि कालिदास निर्मित कुमार संभव का यह पद इस प्रकार है। द्वयम् गतम् सम्प्रति शोचनीयताम् समागम प्रार्थनया कपालिनः कला च सा कांतिमति कलावस्तस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। इस पद में शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली पार्वती के परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आए हुए शिव जी पार्वती की शिव समागम की इच्छा का उपहास करते हुए कह रहे हैं। पहले अकेली चंद्रकला ही शोचनीय थी, अब तुम दोनों की दशा शोचनीय हो गई है। यहाँ कवि ने शिव के वाचक पिनाकी आदि शब्दों को छोड़कर कपाली शब्द का ही विशेष रूप से प्रयोग किया है। उससे जिन दरिद्रता विभत्सता आदि अनेक गुणों का वैशिष्ट प्रतीत होता है वह शिव जी के वाचक पिनाकी आदि शब्दों से व्यक्त नहीं होता है, उसी के आधार पर शोचनीयता का औचित्य व्यक्त होता है। यदि व्यंग्य व्यंजक भाव नहीं माना जाएगा तो वाचक रूप से सभी शब्दों का समान स्थान होने से विशेष पद के प्रयोग में कोई विलक्षण चमत्कार नहीं होगा, इसलिए वाच्यवाचक भाव से भिन्न व्यंग्य व्यंजक भाव अवश्य मानना चाहिए। वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ की प्रतीति में भी महान अंतर। वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ की प्रतीति में संख्या स्वरूप काल आश्रय निमित्त व्यपदेश कार्य तथा विषय आदि के भेद होने से भी व्यंग्यार्थ को वाच्यार्थ से भिन्न मानना आवश्यक है। साहित्य दर्पणकार ने इन भेदों का संग्रह इस प्रकार किया है। स्वरूप संख्या निमित्त कार्य प्रतीति कालानाम आश्रय विषयादिनाम भेदाद भिन्नो विधेयतो व्यंग्यः। दूसरी बात यह है कि यत् परः शब्दः सः शब्दार्थः वाला नियम स्वतंत्र लागू नहीं हो सकता है। असुंदर व्यंग्य नामक गुणीभूत व्यंग के भेद में वानीर कुंज सिदंत्यंगानी इत्यादि स्थल में व्यंग्यार्थ की प्रतीति होने पर भी वाच्यार्थ चमत्कार युक्त होने के कारण उसी में तात्पर्य का पर्यवसान भी होता है। ऐसे स्थलों में जहाँ व्यंग्यार्थ तात्पर्य विषयीभूत ही है, नहीं तो व्यंजना व्यापार के न मानने में वह अतात्पर्य विषयीभूत अर्थ किस व्यापार का विषय बनेगा। लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ में भेद होने से लक्षणा शक्ति से भी व्यंजना गतार्थ नहीं हो सकती। यद्यपि व्यंग्य की ही तरह लक्ष्यार्थ भी अनियत रहता है, जैसे रामोस्मि सर्वम सहे रामेण प्रिय जीवितेन तु कृतम प्रेम्ण प्रिये नोचितम रामोऽसौ भुवनेषु विक्रम गुणः प्राप्तः प्रसिद्धिं पराम इत्यादि स्थलों में दुख सहिष्णुत्व निष्करुण खरदूषणादि हंता इत्यादि एक ही राम शब्द के लक्ष्यार्थ हैं। फिर भी लक्षणीय अर्थ के नाना होने पर भी अनेकार्थक शब्द के वाच्यार्थ के समान नियत रूप ही होता है। इसके विपरीत व्यंग्यार्थ तो प्रकरण आदि के द्वारा कहीं नियत संबंध और कहीं अनियत संबंध और कहीं परंपरित संबंध वाला होता है। अतः लक्ष्यार्थ ही व्यंग्यार्थ नहीं होता है और न लक्षणा से व्यंजनागतार्थ हो सकती है। व्यंजना का विशेष आदर, व्यंजना के विषय को लेकर ग्रंथकार का यहाँ तक का सारा संघर्ष मीमांसकों से रहा। उन्हीं के विरोध का उत्तर देते हुए व्यंजना की प्रतिष्ठा की, परंतु इतने से उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अभी आगे उन्हें वैयाकरणों, वेदांतियों तथा न्यायिकों का भी सामना करना है। इस उल्लास में व्यंजना की प्रतिष्ठा का भगीरथ प्रयत्न ग्रंथकार का है। व्यंजना का चतुर्दिक विरोध है। साहित्य शास्त्र में भी केवल ध्वनिवादी संप्रदाय ही इसे स्वीकार करता है। शेष बड़े बड़े दार्शनिक व साहित्य तो इसका विरोध ही करते हैं। मीमांसक, वेदांती, न्यायिक और वैयाकरण करीब करीब सभी व्यंजना के विरोधी हैं। पर ध्वनिवादी आचार्यों के अनुसार साहित्य शास्त्र की गाड़ी व्यंजना के बिना एक पग भी आगे नहीं चल सकती है। इस शास्त्र में तो अभिधा शक्ति की कोई कदर नहीं है। सीधी साधी बात कहना तो एक तरह गवांजीपना है। जिस उक्ति में कोई चमत्कार नहीं, कथन की कोई शैली नहीं या जिसमें कोई रस नहीं, ऐसे निरस शुष्क उक्ति सहृदयों के हृदय को अच्छी नहीं लगती है। मीमांसक, न्यायिक आदि भले ही नग्न यथार्थवाद से संतुष्ट हो जाएं, पर साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी को तो उन वाक्यों से कथम अपि संतोष नहीं होता। इसलिए आशाधर भट्ट ने कहा है, शक्ति भजन्ति सरला लक्षणाम चतुरा नराह व्यंजनाम नर्म मर्मज्ञाः कवयः कमना जनाः। साहित्य शास्त्र तो रस प्रधान शास्त्र है। रसास्वाद के बिना सहृदय की तृप्ति नहीं होती है। उसी रसाभिव्यक्ति के लिए व्यंजना आवश्यक है। कवित्व की कसौटी और काव्य का प्राण व्यंजना है। इसलिए आचार्य मम्मट ने इसकी सिद्धि के लिए इतना आग्रह और इतना प्रयास किया है। वैयाकरणों या वेदांतियों का अखंडार्थवाद, जो कोष्ठक वेदांती या वैयाकरण यह कहते हैं कि अखंड बुद्धि से ग्राह्य वाक्यार्थ ही वाच्य होता है और अखंड वाक्य ही उसका वाचक होता है, तो उनको भी अविद्या की स्थिति में व्यवहार सत्ता में कोष्ठक बंध आकर पद पदार्थ की कल्पना करनी ही होगी। इसलिए उनके पक्ष में भी उक्त कोष्ठक निशेष च्युत चंदनम इत्यादि कोष्ठक बंध उदाहरण में विधि आदि को व्यंग मानना ही होगा। न्यायाचार्य मही भट्ट का विरोध। व्यंजनावृत्ति के सबसे कट्टर विरोधी मही भट्ट हैं, जिन्होंने काव्य जगत में समाहत इस व्यंजनावृत्ति के साथ ही साथ व्यंजना परिवार के समष्टिभूत ध्वनि तत्व की कठोर समीक्षा की है। आनंद वर्धनाचार्य के ध्वनि सिद्धांत को ध्वंस करने के लिए इस महात्मा ने एक स्वतंत्र ग्रंथ ही लिख डाला, जिसका नाम है व्यक्ति विवेक अर्थात व्यंजना का विचार। ग्रंथ के आरंभ में ही इनकी प्रतिज्ञा भी बड़ी भयंकर है। अनुमाने अंतर्भावम सर्वस्यैव ध्वने प्रकाशयितुम व्यक्ति विवेकम कुरते प्रणम्य महिमा पराम वाचम। सभी प्रकार की ध्वनियों का अनुमान में अंतर्भाव करने के लिए महिमा नामक आचार्य परावाणी को प्रणाम कर व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। कहना नहीं होगा कि बहुत कुछ अंश में इनकी प्रतिज्ञा सफल हुई है। सर्वप्रथम ये ध्वनियालोक के ध्वनि लक्षण पर टूट पड़े। उनके लक्षण का प्रतिपद खंडन करके यह दिखाया कि ध्वनि का तो कोई लक्षण ही नहीं बनता। फिर शब्द और अर्थ का संबंध दिखलाते हुए व्यंजनावृत्ति की समीक्षा करने लगे। इनके मत में शब्द और अर्थ का यदि कोई संबंध है तो वह वाच्य वाचक मात्र संबंध है। बस इसके लिए तो फिर अविधा से अन्य किसी व्यापार को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि कहीं उपचारवश कोई व्यंग्यादि अर्थ की प्रतीति होती है तो वह सब अनुमान के द्वारा ही गतार्थ हो जाती है। इसके लिए अतिरिक्त व्यंजनावृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। बड़े संरभ के साथ इन्होंने अपने ग्रंथ में अनुमान में ही पूरे ध्वनि प्रपंच को संभालने का साहसिक प्रयास किया है। इस पर उन्हें पूरा भरोसा है कि मेरे जैसे पंडित अवश्य मेरी बातों का समादर करेंगे और बड़े गर्व के साथ कहते हैं, युक्तोऽयमात्म सदृशान् प्रतिमे प्रयत्नो नास्त्येव तज्जगति सर्वमनोहरं यत् केचित् ज्वलन्ति विकसन्त्य परे निमिलन्त्य न्ये यद्भ्युदय भाजि जगत् प्रदीपे। जो मेरे जैसे ही हैं उन्हीं के लिए यह मेरा प्रयास है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो सबका मन आकृष्ट करे। भुवन को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर के उदयोन्मुख होने पर कुछ कोष्ठक सूर्यकांत मणि कोष्ठक बन जलते हैं, कुछ कोष्ठक कमल कोष्ठक बन खिलते हैं, कुछ उलू कमुद आदि संकुचित हो जाते हैं। व्यक्ति विभेद की प्रौढ़ तथा तर्क कर्कश विचार चातुर्य से ध्वनि के सारे अंगों को बहुत बड़ी ठेस लगी है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यालोकाकार आनंद वर्धन वह निर्मल यश शायद कब का खत्म हो जाता यदि एकादश शती के उत्तर भाग में मम्मट जैसे अद्भुत विद्वान का उदय नहीं होता। महीभट्ट का मत मुख्यतः न्याय दर्शन की अनुमान प्रक्रिया पर आधारित है, इसलिए इस मत को हम न्याय मत कह सकते हैं। इनका कथन इस प्रकार है। वाच्य से असंबद्ध अर्थ तो प्रतीत नहीं होता है। यदि वाच्य से असंबद्ध अर्थ की प्रतीति होती तो फिर जिस किसी शब्द से कोई भी अर्थ प्रतीत होने लगेगा। इस प्रकार जब व्यंजक शब्द और व्यंग्य अर्थ का आपस में व्यंग्य व्यंजक संबंध है तो वह संबंध अवश्य व्याप्ति के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए व्याप्ति युक्त और नियत धर्मी पर्ववादी में रहने से कोष्ठक अर्थात व्याप्ति तथा पक्ष धर्मता युक्त होने से पक्ष सत्व सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति कोष्ठक बंद तीनों रूपों वाले कोष्ठक धूमादि हेतु के समान कोष्ठक बंद लिंग से लिंगी कोष्ठक अर्थात वहनी आदि के समान साध्य कोष्ठक बंद का जो अनुमान किया जाता है उसी रूप में कोष्ठक व्यंग्य व्यंजक भाव का भी कोष्ठक बंद पर्यवसान हो जाता है। यहाँ तिरुपालिंगा लिंग ज्ञानम अनुमानम यह कहकर व्याप्ति तथा पक्ष धर्मता युक्त एवं त्रिरूप कोष्ठक पक्ष सत्व सपक्ष सत्व विपक्ष व्यावृत तत्व रूप कोष्ठक बंद विशिष्ट लिंग से लिंगी का जो ज्ञान होता है वह अनुमान कहलाता है और व्यंग्य व्यंग्यार्थ की प्रतीति भी व्याप्ति तथा पक्ष धर्मता के बिना नहीं होती। इसीलिए व्यंग्य प्रतीति अनुमिति ही है और व्यंग्य व्यंजक भाव एक प्रकार का अनुमान ही है। उदाहरण के द्वारा इसे और स्पष्ट कर रहे हैं। भ्रम धार्मिक विश्वस्त सस्वाद्य मारितस्तेन गोदान दी कच्छ कुंजवासिना दृप्ति सिंहेन। हे पंडित जी, अब आप निडर होकर भ्रमण करें। गोदावरी के तीर के कुंज में रहने वाले उस दुष्ट सिंह ने आज उस कुत्ते को कोष्ठक जो आपको तंग किया करता था कोष्ठक बंद मार डाला है। इस गाथा का प्रकरण इस प्रकार है। गोदावरी नदी के किनारे किसी उद्यान में किसी स्त्री ने अपना निवास स्थान बनाया हुआ था, जहाँ उसका प्रिय उसे मिलने के लिए आता था। कोई दूसरे पंडित जी अपने पूजा पाठ के लिए फूल तोड़ने उसी उद्यान में आया करते थे। इनके आने से उस स्त्री के कार्य में विघ्न पड़ता था, इसलिए उसने इस प्रकार का उपाय निकाला जिससे पंडित जी का उधर आना बंद हो जाए। इसी दृष्टि से उसने इस पद्य द्वारा पंडित जी को सिंह द्वारा कुत्ते को मारे जाने की सूचना दी। वह जानती है कि पंडित जी जब कुत्ते से ही बहुत डरते थे तो सिंह का नाम सुनते तो वे यहाँ आना ही भूल जाएंगे। भ्रम धार्मिक इत्यादि श्लोक में कोष्ठक गोदावरी तीर स्थित कोष्ठक बंद घर में रहने वाले कुत्ते के अभाव में विहीन भ्रमण कोष्ठक हेतु या लिंग कोष्ठक बंद गोदावरी तीर पर सिंह के रहने के ज्ञान द्वारा भ्रमण के अभाव कोष्ठक साध्य कोष्ठक बंद का अनुमान कराता है। जहाँ जहाँ भीरुओं का भ्रमण होता है वहाँ वहाँ भय कारण के अभाव के ज्ञान पूर्वक होता है, यह व्याप्ति है। और गोदावरी के तीर में कोष्ठक भय का कारण कोष्ठक बंद सिंह की उपलब्धि है, इसलिए साध्य भीरु भ्रमण की व्याप्ति का जो भय कारण के अभाव की उपलब्धि उसके विरुद्ध जो भय कारण है उसकी उपलब्धि कोष्ठक अर्थात अभाव साधक सिंहोपलब्धि रूप कोष्ठक बंद व्यापक विरुद्ध कोष्ठक व्यतिरेक व्याप्ति कोष्ठक बंद की प्रतीति होती है। इसलिए व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा भ्रमण निषेध की प्रतीति हो जाती है, उसके लिए व्यंजना की आवश्यकता नहीं। इसका अनुमानाकार इस प्रकार बन सकता है। एक गोदावरी तीरम भीरु भ्रमणा योग्यम प्रतिज्ञा वाक्य। दो भय कारणोपलब्धे हेतु का हेतु या साधन। तीन यद्यत भीरु भ्रमण योग्यम तद भय कारणा भाववत यथा गृहम व्यतिरेक व्याप्ति उदाहरण सहित। चार न चेदम तीरम तथा भय कारणा भाववत सिंहोपलब्धे उपनय वाक्य। पांच तस्मात भीरु भ्रमणा योग्यम तीरम कोष्ठक निगमन कोष्ठक बंद। इस प्रकार पंचावयव वाक्य से अनुमान द्वारा ही व्यंजनावादी के व्यंग्य माभ्रम अर्थात मत घूमो अर्थात भ्रमण निषेध को गतार्थ कर देते हैं। अतः व्यंग्यार्थ के लिए पृथक व्यंजनावृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं, यह पूर्व पक्ष है। मम्मट द्वारा महीभट्ट के इस अनुमान का खंडन। यहाँ महीभट्ट ने सिंहोपलब्धि को भीरु भ्रमणा योग्यत्व सिद्ध करने के लिए हेतु रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु यह हेतु अनैकांतिक है, अर्थात साध्याभाववद वृत्ति है। जहाँ जहाँ भीरु भ्रमण होता हो वहाँ वहाँ भय के कारण का अभाव हो, इस प्रकार कोई व्याप्ति भी नहीं है, क्योंकि युद्धादि में राजा से भीरु सैनिक भी भय के कारण के रहते हुए भी जाता ही है। इसी प्रकार प्रभु की आज्ञा से या गुरु की आज्ञा से शिष्य अथवा प्रिय के अनुराग से भय के कारण रहते हुए भी जाता ही है। इसी बात को समझाते हैं भीरु भी प्रभु या गुरु की आज्ञा से अथवा प्रिया के अनुराग से अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से भी भय के कारण रहते हुए घूमता ही है। इसलिए यह सिंहोपलब्धि रूप हेतु अनैकांतिक है, अर्थात सव्यभिचार हेत्वाभास है, और कुत्ते से डरने पर भी वीर होने से सिंह से नहीं डरता है, इसलिए विरुद्ध हेत्वाभास भी है। तीसरा दोष यह है कि गोदावरी के किनारे सिंह का सद्भाव प्रत्यक्ष से तथा अनुमान से निश्चित नहीं है, अपितु वचन से, अर्थ के साथ वचन उस नायिका के शब्द का कोई प्रतिबंध नियत सहचार न होने से वचन का प्रामाण्य भी नहीं है। इसलिए पक्ष में हेतु के न रहने से स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास भी है। इस प्रकार त्रिदोष ग्रस्त हेतु से साध्य की सिद्धि किस तरह हो सकती है, अर्थात अनुमान द्वारा भ्रमण निषेध रूप साध्य व्यंग की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसी प्रकार निःशेष चित चंदनम इत्यादि स्थलों में भी चंदन च्यवनादि के द्वारा जो अनुमान महीभट्ट करते हैं वे अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। अतः अनैकांतिक हेत्वाभास है, अर्थात चंदन च्यवन को अनुमापक मानकर नायकांतिक गमनादि को अनुमेय नहीं मान सकते हैं। स्नानादि कार्यों से भी चंदनादि की उपपत्ति हो जाती है। व्यंजनावादी ने तो अधम पद की सहायता से उक्त विधि नायकांतिक गमनादि रूप व्यंग्य माना है, परंतु अनुमानवादी के यहाँ तो अघमत्व की किसी प्रमाण से सिद्धि न होने के कारण अनुमान नहीं हो सकता है। व्यंजनावादी यहाँ तो व्याप्ति के बिना भी इसी प्रकार के अर्थ से इस प्रकार का व्यंग्य अर्थ प्रकाशित होता है। सामान्य रूप से कथन होने से व्यंजनावादी के यहाँ पर दोष नहीं है। पूर्वोक्त विचार को ही मम्मटानुयायी कविराज विश्वनाथ ने इन शब्दों में से कहा है, नानुमानम रसादिनाम व्यंग्यानाम बोधन क्षमम आभासत्वेन हेतुनाम स्मृतिर्न च रसादिधि। काव्य प्रकाश में व्यंजनास्थापन नामक पंचम उल्लास समाप्त।